कैसे तुम्हारे दिल ने गवारा किया जलाल? यानी तुमने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि इस लड़के का हमारे अलावा कौन है? जलाल, इसको बाहर आए हुए सिर्फ एक दिन गुजरे हैं।
जलाल साहब को आदत है कि ऐसे काम करें कि जिसकी उम्मीद किसी को ना हो।
जलाल साहब, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, हमें अपने उम्र का लिहाज करना चाहिए। अगर हम भी जवानों की तरह हर बात पर गुस्सा होने लगे तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाता है?
जलाल साहब, अपने आप को अली रजा की जगह पे रखें। एक सेकंड के लिए सोचें कि आपकी मोहब्बत को कोई पैसों से खरीद रहा है। आप मानेंगे, आप जितने भी पैसों की जरूरत क्यों ना हो, है ना? वाकई क्या आप मानेंगे?
और हाँ, एतराज़ और जवाब देने के बजाय तुम्हें भी गलती का जिम्मेदार समझा जाए। तुम भी ना जलाल।
कोर्ट का फैसला आ गया। मोहतरम खवातीन, मुझे भी कुछ बात कहने देंगी या अपने ही लगाई रहेंगी?
कैसा मुकदमा जलाल साहब? अगर अली रजा ने कोई गलती की है तो ये उसकी उम्र का तकाजा है। उसको अच्छी तरह समझाने की जरूरत है।
शुकू साहिबा, मैंने अली रजा से कोई बुरी बात नहीं की थी। शायद मेरी गलती ये थी कि मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। लेकिन प्लीज आप अपने आप को मेरी जगह पर रख कर देखें। एक लड़की जो बहुत दिनों से कहना चाह रही है कि आपके लड़के से प्यार करती है और कई बार मेरे पास आती है और मुझसे मदद मांगती है, और मैं भी अपनी कोशिश करके ये समझाना चाहूं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो और वो साहिबा हर बार वैसे ही जिद करें, तो बताइए मैं क्या करूं?
ये तो कोई वजह नहीं है कि उसके बिना पर आप एक अमीर घराने की लड़की से अली रजा की रिहाई के पैसे लें।
मेरी बात सुनिए,
माफ कीजिएगा शुको, मेरे भाई ने फिर जिद पकड़ ली है।
कैसी जिद मेरी बहन? मैं कब तक इन दोनों के लिए फैसला कर सकता हूं? मैं कब तक कह सकता हूं कि मैंने ये बाल यूं ही सफेद नहीं किए? कब तक कहूं कि मैं तुम दोनों से बहुत बड़ा हूं लेकिन तुम्हारी बात भी समझ सकता हूं? कसम से अब थक गया हूं इन बातों से। अलबत्ता आप ठीक कहती हैं, शायद मुझे दूसरे अंदाज से पेश आना चाहिए था, लेकिन यह नहीं मालूम किस लिए यह काम करना चाहिए। जब एक लड़की ऐसी बात करती है और एक लड़का ऐसे बर्ताव करे कि छोटे बड़े में कोई फर्क नहीं है, तो बेहतर यही समझूंगा कि दोनों को पहले एक दूसरे से मिला दूं।
क्या मतलब?
यानी ये कि खुद अलीरजा को जाकर नौशीन साहिबा से बात करनी चाहिए। मेरे और आपके पीछे छुपकर बात करने से कोई फायदा नहीं है। उसको खुद ही अपना मसला हल
यानी
करना
आप
चाहिए।
समझते हैं?
मैं कुछ नहीं समझता, खुद अली रजा को समझना चाहिए। मेरी अक्ल कहती है कि ये दोनों एक दूसरे के लायक नहीं हैं, लेकिन मेरा एहसास, मैं उनके एहसास की जगह खुद फैसला नहीं कर सकता।
इसके बावजूद वो पैसे नहीं लेने चाहिए थे।
मैंने तो कहा है कि पूरी बात ना तो अली रजा से कही है और ना आपसे। असल में बात यह है कि वो इस पैसों से नहीं निकला है। ताज्जुब की बात नहीं है, बल्कि मेरा एतबार इस शहर में 70 मिलियन का है कि जिसको कोई नहीं मानता।
तो फिर ये बात अली रजा से क्यों नहीं कही?
चूंकि मैं समझता था कि उसे अपनी अक्ल और फहम से जाकर इस मामले को खत्म करना चाहिए था। थोड़ा गुस्सा और नाराजगी इससे तो बेहतर ही है।
तो फिर पैसे किससे लिए हैं?
डॉक्टर अहमदी जी, यही अपने डॉक्टर अहमदी। मैंने तय किया है कि उनके लैब का चूहा बनकर उनको रिसर्च करने दूंगा, शायद मुझ पर काम करके नई चीजें इजाद कर सकें।
फालतू बात नहीं जलाल।
खुदा का शुक्र है कि आपकी हंसी भी देखी शुकू साहिबा।
जब से तुमने फोन किया है दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास चला आया। अजीब आदमी हूँ, कहते तो इस्तकबाल के लिए आ जाता, लायक नहीं समझा ना? पल पल तुम्हारी याद आ रही थी, जब से तुम गए हो एक रात भी सुकून से नहीं सो पाया।
ये क्या हालत बना रखी है, क्या हुआ है?
जब आप छुट्टियां मनाने जेल गए हुए थे और पांव पे पांव धरे बैठे थे, टाइम पे आपका खाना मिलता था, मैं यहां खून दिल पीता था, मुस्तकिल परेशान रहता था और तुम्हारे एक एक तलबगारों के साथ लड़ाई झगड़ा करता था। हाँ, क्या सोचा था? सिर्फ इतना फर्क था कि चूंकि तुम जेल में थे सब तुम्हारी हालत पर तरस खा रहे थे, लेकिन मेरी मुसीबतों और बदबख्तियों को किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं।
जी हाँ, माफ कीजिएगा, मैं शर्मिंदा हूं, वाकई शर्मिंदा हूं।
शर्मिंदा ना हो, सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि हम अभी भी दोस्त हैं, है ना?
आओ आओ आओ, एक मिनट बैठो यहाँ, बताओ क्या हुआ।
अच्छा ये बताओ, तुम इतने पैसे कहाँ से लाए? सत्तर मिलियन कोई कम पैसे नहीं होते। आपका घर भी तो किराए का है, शुमाल वाला घर तो पहले ही बेच चुके थे। ये बताओ, कहीं बागीचे में कोई नादिर चीज तो नहीं मिल गई जो मुझसे छुपा रहे हो?
क्या तुमको नहीं पता?
नहीं तो क्या मुझे पता होना चाहिए था?
अच्छा मैं समझ रहा था कि तुम जानते हो, मलिकी साहिबा ने मोहब्बत की थी, नौशीन मलिकी।
वाकई अजीब बात है, नहीं मालूम था कि वो इतनी मोहब्बती हैं।
तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मुझे इतनी मोहब्बत से नफरत होती है।
मुझे भी नफरत होती है।
अस्सलाम वालेकुम मेहमान साहब।
मैडम कहाँ हैं? मैंने पूछा मैडम कहाँ हैं?
मैडम बाग में हैं। आप अंदर आए, मैं बुला लेती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम।
हमें मिलना था क्या?
जी नहीं, मुझे आपसे काम है।
हाँ तो बोलो।
मैंने सोचा था एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाएंगे।
समझ नहीं पाई?
मैं चाहता हूं मुझ पर कोई भी मुसीबत आए उससे पहले मुझे खबर होनी चाहिए।
जब तुम्हारी बकवास खत्म हो जाए तो बताना, मैं तुम्हारी बातें सुन लूंगी।
मुझे नहीं मालूम था कि आपके माली हालात इतने अच्छे हो गए कि आप अली रजा फहीम को छुड़ाने के लिए इतना खर्चा करेंगी।
मुझे नहीं मालूम था कि अपने पैसे खर्च करने के लिए तुमसे इजाजत लेनी चाहिए। वो पैसे मैंने नहीं दिए थे।
ये तो मालूम है, नुशीन साहिबा ने खुद ही जहमत की है। मलिकी साहिबा, मुझे किसी से तकल्लुफ नहीं है, खास तौर से अपने आप से। इस वक्त भी अपने बारे में फैसला सुनने आया हूं।
कैसा फैसला?
इस खेल में मेरा हिस्सा कितना है?
तुम्हें फैसला सुनना था, तुम ही बताओ।
फरजाद और आजहर के डिलीट होने का मतलब यह है कि रफी मलिकी की पूरी जायदाद की मालिक आप हैं।
और तुम्हारे लिए भी पहुंचना।
नुशीन साहिबा की कहानी मेरे लिए खत्म हो चुकी है। मलिकी साहिबा, मुझे ना आपकी जहानत पर शक है और ना ही अपनी जहानत पर। मेरे ख्याल से अब हमें वाजह तौर पर बातें करनी चाहिए।
कहा ना, वो पैसे मैंने नहीं दिए, फरजाद से लिए हैं।
मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा हिस्सा मुअय्यन कीजिए।
फरजाद, आजर और रफी को खत्म करने में तुम सिर्फ एक ही को कम कर सके।
वो भी हो जाएगा।
30-70
नहीं, अब मामला बदल चुका है। 50-50, इससे कम तो हो ही नहीं सकता।
लेकिन एक शर्त है, और वो ये कि नौशीन का नाम कभी नहीं लोगे, कभी नहीं। हेलो, हेलो, बोलिए। हेलो, बोलते क्यों नहीं हो?
फिर कोई मुजाहिम?
गाड़ियों की आवाज आ रही थी। जनरल बूथ से था। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि फरजाद था।
फरजाद? नहीं हो सकता। जैसे तुम्हारे बाबा ने उससे बात की है, शायद ही वो फोन करे। पहली बार मैंने उन्हें इतने गुस्से में देखा था। उन पर अफसोस आ रहा है।
माफ कीजिएगा अम्मी, मैं आप लोगों को इस हालत में देखकर खुश नहीं हूँ।
मेरा मकसद ये नहीं था। मैं बताना चाह रही थी कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। इंशाल्लाह ये बुरे दिन भी खत्म हो जाएंगे।
अली रजा।
सलामुअलैकुम मम्मी।
जीते रहो।
कोई आया था क्या?
रोज के मेहमान फरीद और जलाल साहब थे।
खाने के लिए नहीं रुके?
जलाल साहब को जाने की कुछ जल्दी थी।
क्यों?
कह रहे थे तुम्हारे आने से पहले जाना चाहते हैं।
मैं खाना नहीं खाऊंगा, नमाज पढ़कर सो जाऊंगा।
अली रजा इधर आओ, तुमसे काम।
मैं थका हूं अम्मी, कल बात करेंगे।
जलाल साहब ने सब कुछ बताया है। देखो अली रजा, मैंने कोशिश की है कि हमेशा तुम्हारे लिए माँ भी रहूं और दोस्त भी। तुम्हारे लिए पुरसुकून जिंदगी बनाने की कोशिश की है, एक बाइज्जत जिंदगी। कम था लेकिन कम मैंने नहीं रखा कुछ।
इन बातों की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूं।
तो फिर इतनी जिद ना करो, तुम सब कुछ नहीं जानते। जलाल साहब ने नौशीन मलिकी के बारे में बताया। पता नहीं तुम्हारे जहन में क्या है और दिल पे क्या गुजर रही है, क्या फैसला करोगे। लेकिन मैं एक औरत हूं और एक औरत के जज्बात को समझ सकती हूं। वो लड़की इतनी बेवकूफ नहीं है कि जो तुम्हारी रिहाई के लिए पैसे देकर दूसरों के दरमियान गलतफहमियां ईजाद करे। सिर्फ हद से ज्यादा बढ़ा हुआ इश्क और मोहब्बत ही ऐसे काम करने पे मजबूर करते हैं।
लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है सिवाय गुस्सा करने के। कोई तोहमत उस पर नहीं लगाई है। असल में मेरा गुस्सा सिर्फ जलाल चचा से है कि पैसे उससे लिए और आपसे भी कुछ नहीं कहा, तो मेरी क्या हैसियत?
तुम्हारे जलाल चचा भी उसके इश्क के सामने हार गए, वो क्या कर सकते थे?
वो बात जो मुझे बचपन से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी मौके पर नहीं कहना।
मैं एक माँ होने के सबब जबकि नौशीन की मोहब्बत को तुम्हारे सिलसिले में नहीं मानती, फिर भी आखिरी फैसला तुम्हारा ही है।
अलबत्ता आप तो आजर के बारे में भी यही कह रही थी।
गलत सोच रही थी मैं?
नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपकी भी रिजायत हासिल करना ज़्यादा आसान नहीं है।
आज़र की मुखालफत में भी बहुत सी बातें मैंने नहीं बताई थी, क्योंकि मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि सब कुछ ऐसे ख़राब हो जाएगा। लेकिन हकीकत तो यह है कि उसकी इतनी शराफत से मुझे डर लगता है, इतनी तेज़ मिजाजी।
ये बातें मुझसे तो ना कहिए। जलाल शायान साहब का नंबर मिलाकर कहिए कि जब मुझे रफी की फैमिली के पैसों से जिंदान से आजाद करा रहे थे, तो क्या कभी उसके बारे में भी सोचा कि मुझे किस मुसीबत में डाल रहे हैं?
मैं 30 साल से जलाल साहब को जानती हूं। मुझे याद नहीं कि उन्होंने कोई भी काम बिला वजह किया हो। तुम मलिकी की फैमिली के पैसों से जेल से बाहर नहीं हो।
क्यों मुझसे पहले नहीं बताया?
शायद उन्होंने सोचा हो कि यह बेहतरीन मौका है कि तुम दोनों बैठकर अपना फैसला खुद करो। तुम्हारा तो नहीं मालूम, लेकिन उनकी दलीलों से मैं कायल हो गई हूं।
तो अब क्या करें?
शेख नौशीन मलिकी को वापस करो, जलाल साहब से माफी मांगो और फिर आके अपना खाना खाओ। जहां तक मैं जानती हूं, इस सालन को मैं 2 बार गर्म कर चुकी हूं और ताजा रोटी से खाने में मजा आएगा।
आज अली रजा से मिली थी। उसने क्या कहा? क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि इस किस्से को यहीं पर खत्म करो? तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारी इतनी मोहब्बतों के लायक है?
जब इंसान किसी को चाहता है तो उसे कैसे पता चले कि उसका वो इश्क सच्चा है या नहीं?
हर चाहत का अंजाम भी होना चाहिए।
हेलो, कौन? अरे कम से कम सांस तो लो, मर ना जाओ।
रहमान तुम हो?
मैंने कहा था ना कि तुम फोन मत करना, मैं खुद करूंगा।
मैं लौट आया हूँ, सुन रहे हो? मैं ईरान में हूँ।
सलाम अलैकुम शाम साहिबा।
वालेकुम सलाम शायान साहब।
वाह भाई वाह, खुदा का शुक्र है, लगता है सब ठीक ठाक चल रहा है जो इतना इंतजाम किया है।
ये अली रजा का काम है, आपका हिस्सा भी आपके टेबल पर रखा है।
क्या अली रजा आज आया है?
मुझसे पहले आया है, चाय दम की, ताजी रोटी लाया और इस वक्त अपने कमरे में कुछ काम कर रहा है।
खुदा का शुक्र है कि अकल तो ठिकाने आई उसकी।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम। फूल ना भी लाए होते तो भी मुझे खुशी होती, बहुत जहमत की।
ज्यादा नहीं हुई।
3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट तुम्हें टाइम देता हूँ कि नाश्ता मेरी टेबल पर लगाओ, साथ में करेंगे। बहुत दिनों से ताजा नान नहीं खाए हैं।
जरूर, क्यों नहीं जनरल साहब। अम्मी ने सब कुछ मुझे बता दिया।
अच्छा,
कह रही थी मेरी आजादी के पैसे आपने दिए हैं, मलकी साहिबा ने नहीं।
कोई खास सहमत नहीं हुई, परेशान मत हो।
बहरहाल मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए।
पहले तो ये बताओ कॉलेज का क्या किया, गए थे कि नहीं?
आज जाऊंगा, अलबत्ता अगर आपकी इजाजत हो।
कोई बात नहीं। दूसरी बात यह कि मलकी साहिबा का चेक लौटा दिया?
आज वो भी वापस कर दूंगा, वो जरूर कॉलेज जाएंगी। तो मुझे माफी मिली क्या? नहीं।
फिलहाल तो और भी काम है, जाओ जल्दी अपने काम निपटाओ।
जरूर, हमेशा की तरह जरूर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।
सलाम, क्या हाल है? सब ठीक है?
अरे इधर कैसे?
अरे भाई तुम तो बूढ़े हो रहे हो, अब तक पढ़ाई खत्म नहीं की।
हम तुम्हारे तरह ज़हीन थोड़ी हैं कि 4 साल में ग्रेजुएट कर लें और पीएचडी कर लें।
ठीक है दोस्तों,
खुदा हाफिज़।
चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। खुदा हाफिज़।
ठीक है, खुदा हाफिज़।
मलिकी साहिबा, मलिकी साहिबा, सलाम अलैकुम। ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ये लीजिए।
ये क्या है?
मैंने तो कहा था लौटा दूंगा। खोल सकती हैं प्लीज?
ज़रूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि 70 मिलियन होगा।
प्लीज़ इसे खोल कर देख लें।
मुझे अंदाज़ा था कि शायन साहब इतनी जल्दी नहीं मानेंगे, शायद कहने का कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन आप ठीक ही कहते हैं। नहीं 70 मिलियन और न वो 10 मिलियन इंसान को ख़रीद नहीं सकता।
कैसे 10 मिलियन?
अच्छा, मैंने सोचा था पैमान ने आपको सब कुछ बता दिया होगा, शायद कहा हो लेकिन आप भूल गए हो। बहरहाल कोई बात नहीं, जहाँ भी हैं खुश रहिए। खुदा हाफिज़।
फरजाद, फरजाद, फरजाद,
तुम यहां हो?
पहचान गए? शायद तुम्हें मेरे आने की उम्मीद नहीं थी।
कितनी तुम्हारी याद आ रही थी फरजाद।
बहुत बदल गया हो ना?
नहीं तो, बिल्कुल नहीं बदले हो, सिर्फ थोड़ा हुलिया बदल गया है।
लेकिन तुम वैसे ही हो। मुझे भी यकीन नहीं आता। मैं فرزاد ملکی، رفیع ملکی کا بیٹا، کیسی حالت ہو گئی ہے میری؟
پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔
شاید تم پھر یہی چاہتے ہو کہ سب کچھ تمہارے حوالے کر دوں؟
تم پاگل ہو گئے فرزاد۔
ہاں پاگل ہو گیا ہوں، کاش تمہاری بات نہیں سنتا اور نہ جاتا۔ کیوں مجھے آزر کے سامنے اتنا ذلیل کیا؟ بھائی ایسے ہوتے ہیں، ایسے رازدار ہوتے ہیں۔
میں نے کچھ بھی نہیں کہا ہے۔
تو پھر کس نے کہا؟
زرین صاحبہ نے۔ اگر تم نے نوادرات کی بات بتائی ہوتی تو تمہاری یہ مشکل بھی حل کر دیتا۔
مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی، بابا نے کبھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، تم نے بھی نہیں بتایا، انجان تو نہیں تھے نا؟
میں اگر جانتا تو پولیس مجھے کبھی نہ چھوڑتی، لیکن تم، اگر تم بھی انجان ہو تو یہاں آ کر کیوں چھپے ہوئے ہو؟ ان دنوں جب تم بیرون ملک پڑھنے کے بجائے مستیاں کر رہے تھے اور میری کمائی کو برباد کر رہے تھے، تب بھی یاد نہیں آئی؟ میں نے پوری کوشش کی کہ نوادرات کے مسئلے میں تمہارا نام نہ آنے پائے، لیکن زرین صاحبہ نے تمہارے بیوی بچوں کے بارے میں بتا دیا۔
کوئی بچہ بچہ نہیں تھا، بس ایک کھیل تھا تاکہ مجھے وہاں بلائیں اور کچھ پیسے مجھ سے اینٹ لیں۔
اور تم نے بھی اپنے سارے پیسے لٹا دیے ہوں گے؟
اس کا دگنا دینے کے لیے تیار تھا واپس آنے کے لیے۔ مجھے سب کچھ آزر سے کہنا ہوگا، مجھے یقین ہے کہ مجھ سے ملنے کے بعد میری باتیں سنیں۔
اگر ہمت ہو تو پولیس کے پاس جا کر بتاؤ، ان سے بھی بتاؤ، وہ ضرور یقین کریں گے۔
میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے۔
نہیں بالکل نہیں، بالکل تم نے کچھ نہیں کیا، لیکن تمہیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ تمہارے باپ نے نوادرات کو تمہارے نام پر امانت کے طور پر رکھوا دیا ہے۔
تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟
میں بھی نہیں جانتا تھا، ان دنوں جب مجھ سے پوچھ تاچھ کر رہے تھے تو سمجھا۔ تم بھی اگر بہت جاننا چاہتے ہو تو ساری باتیں پولیس سے جا کے پوچھو۔
اب میں کیا کروں؟
میں رفیع صاحب سے بہت مار کھا چکا ہوں، امید نہیں تھی کہ تمہارے چکر میں بھی پٹوں گا۔
پیمان مجھے کیا کرنا چاہیے؟
جو وہی کرو جو کرنا چاہ رہے تھے۔ تم کس لیے واپس آئی؟
آزر کی خاطر، اس لیے کہ وہ یہ نہ سوچے کہ پھر اسے دھوکہ دے رہا ہوں، اس لیے کہ ثابت کر سکوں اسے چاہتا ہوں۔
اگر کچھ دن اور برداشت کر لیا ہوتا تو آزر بجائے اس کے تم کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے دیکھنے گھر میں ملتی۔ تم نے تو اپنے آپ پر بھی رحم نہیں کیا فرزاد۔
پیمان ایک منٹ رکو، ایک منٹ رکو، ہم اور تم بھائی جیسے ہیں، ساتھ میں بڑے ہوئے، تم نے ہمیشہ میری مدد کی ہے نا؟ تو پلیز مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟
صبر فرزاد، صبر، صبر کرنا پڑے گا۔ میں خود نہیں جانتا کہ کیا کرنا چاہیے۔